हो जाए मसीह की। दो इतवार को हम एक विषय को लेकर परमेश्वर के वचन में जाएंगे और विषय यह है यीशु मसीह के प्रति हमारी शिष्यता। कॉल ऑफ डिसाइपलशिप, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यता की बुलाहट और शिष्यता की कीमत। सो आज जो मैं आपके सामने वचन को बांटना चाहता हूं परमेश्वर की सहायता के द्वारा, शिष्यता की बुलाहट। और हमने मरकुस उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ा था। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, बाइबल को देखते हैं, तो यद्यपि हम इस बात को देखते हैं कि शिष्य कौन है। और प्रेरित काम उसका 11 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है कि और सबसे पहले शिष्य मसीह कहलाए। सबसे पहले शिष्य मसीह कहलाए। शिष्य वो है जो मसीह है, मसीह वो है जो शिष्य है, यीशु मसीह का शिष्य है। और मसीह तग्मा हम बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। और मसीह जब तग्मा हम लेते हैं तो बाइबल में परमेश्वर के वचन में, मैं बार बार इस बात को भाइयों के साथ बांटता हूं कि एक नई पहचान है जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, जो प्रेरित काम में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। एक मसीह की नई पहचान है, नया नाम है, नई पहचान जिससे यीशु मसीह के अनुयायी मसीह नाम से जाने जाते हैं। सो शिष्य कौन है जो यीशु मसीह का अनुयायी है, प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हम कुछ स्थलों में जाएंगे और फिर बाद में कुछ बातों को देखना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अगर जब हम वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में आए और उससे पहले यूहन्ना ने प्रचार किया और उसके पीछे भी लोग चले, वे भी उसके शिष्य बने, तो क्या सिद्धांत बाइबल का है जो परमेश्वर ने अपने वचन में शुरू से लागू किया है, रखा है, और उसी सिद्धांत में होकर हमको भी आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचन की एक बहुत ही सुंदर बात पाई जाती है, जब हम बाइबल का पढ़ते हैं, बाइबल को सीखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे सामने परमेश्वर के वचन में हमेशा ध्यान आना चाहिए कि बाइबल परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर प्रति किन सिद्धांतों को हमारे सामने रख रही है। और जब हम उन सिद्धांतों से अलग होकर तोड़ मरोड़ करके कुछ और अपने सिद्धांत बना लेते हैं तो वहां फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर वहां पर इस तरह से हो जाता है जैसे आपने घोड़ा गाड़ी देखी है, घोड़ा आगे रहता है, पीछे गाड़ी होती है। अगर घोड़ा आगे है, गाड़ी पीछे है, उसमें आप बैठे हैं, सवारी चल रही है अच्छी, लेकिन अगर घोड़े के पीछे बांध दिया जाए और गाड़ी को आगे बांध दिया जाए और घोड़ा यूं करके धक्का लगाए तो क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगी और जो उस पर बैठे वो भी गिरेंगे, चोट लगेगी। और अधिकतर आज हम यही करने लगते हैं और इसलिए हम मसीह जीवन में हानि उठाते हैं। सो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें बहुत अधिक परमेश्वर के वचन को सीखते समय, पढ़ते समय सिद्धांतों को ध्यान देना है। सो जो आज हमने मरकुस का पहला अध्याय उसके 9 पद से हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को यहां पर आरंभ किया है। और प्रभु यीशु मसीह की सेवा के आरंभ से पहले उसके लिए मार्ग तैयार किया गया। हम दो स्थलों को देखना चाहेंगे और दो को कंपेयर करते फिर आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यूहन्ना बपतिस्मा ने भी वही कार्य किया जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। अगर आप पहला मरकुस का पहला अध्याय उसके हमने जो पढ़ा है 14 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ। इससे पहले यूहन्ना प्रभु के मार्ग को तैयार कर रहा था, यूहन्ना सुसमाचार प्रचार किया कर रहा था। जो यूहन्ना सुसमाचार प्रचार कर रहा है उसका विषय भी वही है जो यीशु प्रचार कर रहे हैं, उसका विषय भी वही है जो यूहन्ना काम कर रहा है, वही कार्य को हम आगे चल के देखते हैं यीशु भी कर रहे हैं। और उसी कार्य को हम आज जब एक शिष्यता के बारे में बात करते हैं वही सिद्धांत मेरे और आपके लिए भी लागू होता है। क्या प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, जब वो हम देखते हैं तो क्या कह रहा है 14 पद में, सुसमाचार सुनाता हुआ और ये कहने लगा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज आ गया है, परमेश्वर का राज निकट है। अगर आप मत्ती में आइए, मत्ती में और मत्ती में उसके 30 अध्याय में मेरे साथ निकालिए मत्ती, जहां पर हम दोनों को देखना चाहते हैं। हम ये शिष्यता की बुलाहट पर विचार कर रहे हैं। और तीसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ा हूं, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यहूदिया के जंगल में आया और वो ये कहकर प्रचार कर रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट, अरे उस समय तो रोमी राज था, कैसा उनका शासक था ये सब, लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से पहले यूहन्ना प्रचार कर रहे हैं स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यह सच है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के साथ साथ इस पृथ्वी पर हम कई राजों को देखते हैं। अगर एक व्यक्ति आज जिस सरकार का राज है उस सरकार के सामने खड़ो के कहे कि मेरा राज है मेरा राज है मेरा राज है, तो क्या होगा, क्या लोग उसको पागल समझेंगे? और यही कारण था कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने ही समझा, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे थे। उस समय कैसर का राज था, रोमी शासक था, कैसर शासक था, और उस राज में यहूदी लोग भी थे, सब कुछ था, लेकिन वहां पर यह प्रचार किया जा रहा है कि परमेश्वर का राज आ गया है। अगर परमेश्वर का राज आ गया तो क्या करना है, यह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्रियो, शिष्यता में आने के लिए सबसे पहली बात मुझे और आपको समझना है कि परमेश्वर का राज है क्या। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का वचन कहता है खाना पीना नहीं है, व्यर्थ बातचीत नहीं है, व्यर्थ गपशप नहीं है। मैं अगर पदों को मैं जाऊं तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप रोमियो में जाइए, क्रोन्थियो में जाइए, तो वहां पर आपको मालूम चलेगा पौलुस बार बार कहता है परमेश्वर का राज धार्मिकता है, परमेश्वर का राज प्रेम है, परमेश्वर का राज आनंद है, परमेश्वर का राज पवित्र है। और वो कह रहा है कि पवित्र, वो कह रहा है परमेश्वर का राज आ गया है। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उस संसार में इस पृथ्वी पर यद्यपि दूसरे राज दिखाई देते, लेकिन उनमें प्रभु यीशु मसीह इन चीजों को लेकर इस पृथ्वी पर आए। और तब वो क्या कह रहा है, और वो इस प्रचार को कहते हुए कहता है मन फिराओ राज आ गया है। और जब वो प्रचार कर रहा था तो क्या लिखा है छठे पद में, जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, अर्थात जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर का राज क्या है, उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, विश्वास किया, और वे परमेश्वर के राज के सहभागी हो गए, और वो विश्वास करके उसके पीछे चल गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वे शिष्यता में शामिल हो गए। यही चीज प्रभु यीशु मसीह भी कर रहे हैं। अगर आप यूहन्ना में मत्ती में देखेंगे, मत्ती उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यही सुसमाचार प्रचार किया। क्यों? उससे पहले यूहन्ना प्रचार कर रहा था, अब यूहन्ना बंदीगृह में जा चुका है, यूहन्ना बंदीगृह में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में जा चुका है, उसके कुछ समय बाद उसका गला भी काट दिया गया। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, विषय एक ही है। और प्रभु यीशु मसीह मरकुस में क्या कहते हैं, उसी चीज को आगे कहते हैं, तब हम परमेश्वर का राज आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। एक शिष्यता का आरंभ, तब क्या लिखा हुआ आगे, जब वो गलील के झील के किनारे जा रहा था और सब कुछ कहा, तब उसने लोगों को कहा मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछो बनाऊंगा। और तब आगे चल के लिखा है कि वे नाव को छोड़ करके उसके पीछे चल पड़े। मत्ती में अगर आप 3-4 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर यही चीज मिलेगा कि जब उसने प्रचार किया, लोगों ने उस पर विश्वास किया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। शिष्य कौन है, शिष्य कौन है जिसने परमेश्वर के राज को समझा है, जिसने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास किया है, जिसने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, और बार बार प्रभु यीशु मसीह के वचन प्रचार में यही था, सुसमाचार यही था कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज आ गया है, विश्वास करो। और मेरे प्रियो, ये शिष्य थे जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास करने बाद उसके पीछे हो लिए और उन्हें बपतिस्मा लिया और तब सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। समय कम है, लेकिन अगर घर में जाकर आप इन स्थलों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही थी, लेकिन उस भीड़ में से कुछ लोग थे जिन्होंने सचमुच में उस पर विश्वास करके आगे चले, और तब पर प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से 12 को चुनकर अपने साथ सेवा में रखा। इसलिए रखा कि वे उसके साथ रहें, उससे सीखें, उसके साथ रहकर उसको सीख करके और तब उन कार्यों करें जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। So, सबसे पहला उद्देश्य था एक ये शिष्य का कि उस पर विश्वास करके उसके पीछे होने और उसके साथ रहे। मेरे प्रियो, हो सकता है हम कई बार लोगों से बात करते हैं, अरे हम वहां थे, बीमार थे, चंगे गए, हम प्रभु पास पीछे चले। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार में स्पष्ट है। अगर आप प्रेरितों में जाएं, प्रेरित काम में जो हम पढ़ते हैं, जब प्रेरित लोग खड़े होकर प्रचार करते हैं, बार बार उनका प्रचार कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौटाओ। क्या मतलब है? और तब लिखा है वे पीछे उसके पीछे चल पड़े। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, संसार में चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उस समय संसार के अनुसार, संसार की रीति से, संसार में होकर हम संसार के पीछे चलते हैं। उसके कार्य हमारे होते हैं, उसकी योजना हमारी होती है, उसका इच्छा हमारी होती है, उसका मन हमारा होता है, सब संसार हमारा स्वामी होता है। लेकिन इस संसार में, पर इस संसार में फिर समय ला रहा हूं कि ऐसे समय में जबकि संसार शैतान का राज है, कैसर का राज है, रोमी शासन है, सब कुछ है, उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज आ गया है। अर्थात तुम परमेश्वर की धार्मिकता को पहचान लो, परमेश्वर की पवित्रता को पहचान लो, परमेश्वर की योजना को जान लो। यह प्रचार है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है, उस पर विश्वास करता है, मन फिराता है, मन फिराने का मतलब यह है कि हम संसार में चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, संसार हमारा स्वामी है, संसार हमारा अधिकारी है, अब हम उसको छोड़ करके प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, हमारी पीठ संसार की तरफ हो जाती है, अब हमारा हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जैसे हम गीत को गाते हैं, मैं सब कुछ को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। एक शिष्य, यदि मैं और आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने का दावा करते हैं और इस बात को कहते हैं हां मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, या हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, क्योंकि मैंने कहा प्रेरित काम उसके 11 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, और चेले सबसे पहले मसीह कहलाए, एक नया नाम उनको दिया गया, नई पहचान उनको दी गई जो मसीह के रूप में थी। अगर हमें कहते हैं तो हमें इस बात पर सोचना विचारना है, क्या मैंने सुसमाचार पर विश्वास किया है, क्या मैंने सच्चाई के साथ पश्चाताप किया है, मन फिराया है। किसी धर्म को स्वीकार करने से पहले कई लोग क्यों आप मसीह पीछे चले, अरे ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं, कोई जात पात नहीं होती, साथ बैठ के खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, समानता इस पे नहीं। ये पृथ्वी में समानता आपको थोड़ी देर के लिए तसल्ली देती है, लेकिन फिर भी आप अनंत काल के नरक में पहुंचेंगे। एक कन्विक्शन, एक निश्चयता, यह होना जरूरी है, प्रभु की आवाज को सुनना जरूरी है। इन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, और अगर आप विस्तार से इसका अध्ययन करें, बार बार यूहन्ना ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात का प्रचार किया, मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो, लौटाओ। और जब उन्होंने विश्वास किया, लिखा है वो उसके पीछे हो लिए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और सब कुछ छोड़कर पीछे गए। कौन सा दिन था आपके जीवन में जब आपने परमेश्वर की बुलाहट को चुन लिया? कौन सा दिन था जब आपने सच्चाई के साथ पश्चाताप कर लिया, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया? आप रो रो के प्रभु के सामने हो गए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझ पापी पर को क्षमा कीजिए, मुझे अपना पुत्र पुत्री बना लीजिए। हम कई बार एक झूठी संतावना में होकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आती है, जो कीमत चुकाने की परिस्थिति आती है, हम पीछे आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप नेक्स्ट संडे हम देखेंगे। लेकिन ये समय देखना, पहली चीज हमारे अंदर ये निश्चयता होनी चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, मैं उसका शिष्य हूं और मैं उसके शिष्य हूं। So, यहां पर हम इस बात को देख रहे हैं, वो कह रहा है, और ये कहने पर तब उसके बाद लिखा हुआ है, और मत्ती में भी यही वर्णन है, मरकुस भी यही वर्णन कर रहा है। अगर आप दोनों अध्यायों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, वो कहता है और वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। वो पुरानी आदतें, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुरानी इच्छाएं, पुराने मित्र, वो सारी चीजें जो हम पुराने उसमें बने थे। और मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलना एक सचमुच में कठिनाई को उठाना है। कई बार संसार नहीं समझ सकता, कई बार उसके घर के लोग नहीं समझते। क्या प्रभु यीशु मसीह के घर वाले लोग उसको समझ पाए थे? नहीं समझ पाए थे। उसके घर के लोग, उसके भाई लोग, उसके घर के लोग उसको पागल कहते थे, कहीं कहते थे उसके अंदर दुष्टात्मा है, कहीं कुछ कहते थे, कहीं कुछ कहते थे। लोग तो बोलते थे, लेकिन उसके घर के लोग भी उसको नहीं पहचानते थे। यहां तक कि उसके समाज के लोग, जो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं उन्होंने उसी सिद्धांत, कई बार बोलते हैं क्या इन शिष्यों ने बपतिस्मा लिया था या नहीं लिया था, लोग प्रश्न करते हैं क्या इन शिष्यों ने बपतिस्मा, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था क्यों, हमें बाइबल क्या बताती है, क्या लिखा है, उन्होंने उसके पीछे चल दिए, बपतिस्मा लिया और सबको छोड़कर के पीछे चल दिया। अब बहुत सारी चीजें, मुख्य बात यह है क्या हमने उसकी आवाज को सुनकर प्रति उत्तर दिया है, क्या हमने सच में पापों से क्षमा को प्राप्त करके उस पर विश्वास करके मन फिरा करके उसके पीछे चलना आरंभ किया है। अगर हमने ऐसा किया है तो हम उसके शिष्य हैं, अगर हम उसके शिष्य हैं तो किस प्रकार से मुझे इस शिष्यता में बने रहना है, किस प्रकार से उन शिष्यता में बने रहना है। और एक मसीह जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि ना केवल, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ना केवल परिवार में एक बच्चे को हम जन्म देखते हैं कि वो जन्म पाए, लेकिन बच्चे को हम बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर वो बच्चा जन्म पाने के बाद कुछ समय बाद वो बढ़ता नहीं है, यहां पर पिछले दिनों में एक परिवार आ रहा था और उनकी बच्ची का जन्म हुआ, कई साल बाद प्रभु ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में उनको गोद में बच्चा दिया, लेकिन वो बहुत चिंतित थे, 6 महीने हो गया वो बच्ची नहीं बढ़ रही है, क्या करा, हमारे भाई लोग उसको डॉक्टर पास ले गए, इसका इलाज कराया। क्यों माता पिता चिंतित हो गए, क्यों कलीसिया के लोग सहयोग करने लगे, क्योंकि सबकी मन की इच्छा ये थी ये बच्चे को बढ़ना चाहिए, अगर जन्म हुआ है तो उसको बढ़ना चाहिए, यदि आप शिष्यता में शामिल हुए हैं तो शिष्यता में आपको बने रहते के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। केवल संडे को चर्च में आ गए, केवल बुधवार को चर्च में आ गए या बाइबल स्टडी में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई के जीवन में जहां पर आप काम करते हैं या सामाजिक जीवन में, मेरा और आपका क्या अभिप्राय रहता है यह मैं देखना है। प्रश्न यह है, यदि मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं, यदि मैं यीशु मसीह की शिष्य हूं, तो क्या मेरे अंदर वो अभिलाषा है कि एक शिष्यता मेरे जीवन में जड़ पकड़ती जाए, दृढ़ होती जाए, बढ़ती जाए। मैं अक्सर बोलता हूं जड़ नीचे जाती है, अंदर जाती है, कई तरह की जड़ होती है, कुछ जड़ बाहर भी होती है, उनकी अलग वो है, लेकिन जड़े, लेकिन जितनी जड़ अंदर गहरी होती है और खास से मूल जड़ जो मुख्य जड़ होती है जो सारी जड़ों को जब समाये रहती है लंबी जड़, जितनी वो नीचे चली जाती है मूल जड़, उतना अधिक पेड़ ऊपर बन के मजबूत होता जाता है और फलवंत होता जाता है। इसीलिए पौलुस भी कहता है जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जड़ पकड़। So, क्या एक शिष्य होने के नाते मैं अपने मसीह विश्वास में, मसीह जीवन में मैं जड़ पकड़ रहा हूं, एक अच्छे शिष्य के अनुसार आगे बढ़ रहा हूं, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको एक व्यक्ति के जीवन के साथ ले जाना चाहूंगा पुराने नियम में। कहेंगे पुराने नियम में आ रहे इसके बारे में, नहीं, दाऊद प्रभु परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा समर्पित शिष्य था, उसके जीवन में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। भजन संहिता 78 को हम पढ़े तो वहां पर वो अपनी बुलाहट के बारे में बात करता है, बुलाहट के बारे में बात करता है, वहां पर वो अपने अपनी योग्यता के बारे में बात करता है, अपनी खराई के बारे में बात करता है, वो जानता है कि परमेश्वर ने उसको बुला करके किस रीति से अलग किया है। सो उसके जीवन से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर हमने मन फिराया है, फिर से मैं कह रहा हूं परमेश्वर का राज आ गया है, मन फिराओ, पापों का अंगीकार करो और बपतिस्मा लो, और परमेश्वर का राज आ गया, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, यही एक संदेश है जो शुरू से आरंभ से प्रचार किया गया, और यही एक संदेश है जिसे मुझे और आपको प्रचार करना है, यही एक संदेश है जिसे मुझे और आप पर विश्वास करना है, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन परमेश्वर के राज को क्या आनंद उठाएगा, परमेश्वर के राज मरने के बाद नहीं, लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसका राज का आनंद हम इस पृथ्वी पर उठाने लगते हैं, वो हमारे जीवन में आने लगता है। प्रभु यीशु मसीह इस राज को इस पृथ्वी पर स्थापन करने के लिए आए थे। सो आइए मेरे साथ भजन संहिता 119 निकालिए, और भजन संहिता 119 में हम कुछ बातों को दाऊद के जीवन से देखने जाएंगे। मैं अक्सर इन वचनों को लोगों के सामने बांटता हूं, कई बार जवान बच्चों के सामने बांटा है, लेकिन फिर से कई सारी चीजें हैं, लेकिन पांच मुख्य बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। भजन संहिता 119 और दाऊद किस प्रकार से अपनी अभिलाष को यहां पर व्यक्त कर रहा है। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, निर्बल था, मनुष्य था, असफलता आई, विफलता आई, लेकिन जब उसके अंदर असफलता आई, जब विफलता आई, वो व्याकुल हुआ, उस पाप ने उसको काटा, बेचैन हुआ और रोया, बच्चों के सामने विलाप किया और परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगी और क्षमा मांगने बाद परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, दया की और वो परमेश्वर के साथ फिर आगे बढ़ गया। दाऊद के लिए कहा आता है परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति, क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में एक बात सीखी थी कि उससे यदि अपराध हुआ तो उसने परमेश्वर सामने सच्चाई के साथ उसको माना और छोड़ दिया और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करी। यही चीज उसने अपने बेटे सुलेमान को सिखाया, कहा सुलेमान को कहा जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, दया की जाएगी। और इसलिए दाऊद का जीवन मेरे और आपके लिए बहुत ही अधिक आशीष का जीवन रहा है। भजन संहिता 119 मैं 57 पद से कुछ बातों को आपके सामने लाऊंगा। 57 से 64 पद तक मैं हम पांच बातों को देखना चाहेंगे कि दाऊद की अभिलाषा, दाऊद की इच्छा, दाऊद का समर्पण, दाऊद की चाहना एक मेरे और आपके अंदर होना चाहिए यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और शिष्यता में बने रहना चाहते हैं, शिष्यता में हम बढ़ना चाहते हैं। यह अभिलाषा है। सबसे पहला, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों को मानने की प्रतिज्ञा की है। पहली बात, परमेश्वर के वचन का सम्मान हमारे जीवन में, परमेश्वर के वचन का सम्मान। सम्मान का मतलब क्या है? कितना अधिक मेरे हृदय में एक शिष्य होने के नाते अपने उस गुरु, हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से भारत में हैं और गुरु और शिष्य की जो प्रथा है ये भारत में बहुत पहले से और आप उसको जानते थे। आरंभ में किस प्रकार से माता पिता बच्चों को ले आते थे और ले जाके गुरु के पास छोड़ देते थे और वो गुरु के गुरु प्रणाली में जो शिष्य गुरु प्रणाली थी उसके अंतर्गत वो उनके साथ रहते थे और गुरु सब कुछ उनको सिखाते थे, समझते थे, उनकी सेवा और वो शिष्य उनकी सेवा करते थे, एक संबंध होता था, वो शिक्षा प्राप्त करते थे गुरु के साथ बैठ करके। अगर मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कहता हूं तो सबसे बड़ी पहली बात मेरे अंदर ये डिजायर, ये भूख, ये लालसा ही होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन को क्या महत्वता देता हूं। वो यहां कह रहा है 57 पद में, मैं तेरे वचनों को मानने की प्रतिज्ञा की है। उसके बाद आगे जो वो कहता है 60 पद में, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में देरी नहीं, शीघ्रता की है। फिर वो बार बार परमेश्वर के वचन को मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर के वचन में के प्रति क्या इच्छा है? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन, जब हम पढ़ते नहीं, संडे को सुन लिया संदेश काफी है, हमारे पास बाइबल है। अगर आप खुद पूछे कि आपने कभी अपने जीवन में 8 साल 10 साल 20 साल शायद आपको प्रभु में आए हुए हो गए, क्या आपने बाइबल को कभी खत्म करा है? क्या आपने नया नियम को कभी खत्म करा है? आप अगर विश्वास में आ गए तो आपके अंदर यह इच्छा हुई कि ठीक है 2015-2016 अगर चल रहा है तो मैं इस साल नया नियम को खत्म करूंगा या बाइबल को पढ़ूंगा। पढ़ लेंगे, दो पद पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया। परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदय में क्या महत्व है? और अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, उसके हमारे महत्व नहीं है, हम विश्वास में नहीं बढ़ सकते, हम उस धार्मिकता के जीवन में नहीं बढ़ सकते। वचन हमारे जीवन के लिए जरूरी है। वचन आत्मिक भोजन है, वचन को खाना है, वचन को लेना है, वचन को मन में बसाना है, वचन पर मनन करना है, वचन को पढ़ना है, वचन को मुखाग्र करना है, वचन को याद करके उसको पालन करना है। वो कह रहा है, यहां पर कहता है, मैंने तेरे वचन को मानने की प्रतिज्ञा की है। वो प्रॉमिस की बात कर रहा है, मैंने एक निश्चय लिया करा है, मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं तेरे वचन को मानूंगा। कैसे मानूंगा? जब तक अगर मुझे मालूम ही नहीं तो मैं कैसे माने पाऊंगा? और कैसे मुझे मालूम चलेगा? जब मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, देखूंगा, जानूंगा, उसको सीखूंगा, उसको पहचानूंगा, उसको समझूंगा, तभी तो मैं मानने पाऊंगा। लेकिन कहां से मैं मानने पाऊंगा? और मेरे प्रियो, मुझे दुख होता है क्यों हम आज हेल्दी क्रिश्चियन नहीं है, वेल्दी बन जाते हैं संसार के, लेकिन एक मसीह विश्वास में मजबूत या धनी मसीह नहीं। क्यों? हमने वचन को उतना महत्व नहीं दिया है। अय्यूब कहता है भजन अय्यूब 23 में उसके 12 पद में, मैंने तेरे वचन को दैनिक भोजन से अधिक महत्व जाना है। और अगर हम अपने आप को शिष्य कहते हैं तो शिष्यता की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके वचन को जाना। मैंने कहा कि सबसे पहली बात क्यों प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य को सुना था, कि वे उसके साथ रहे, उसकी सुने, उसको देखें, उसको जाने। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को मुझे और आपको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थी वचन को मुझे और आपको दिया है। और इस वचन के माध्यम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम यीशु को देखते हैं, यीशु को जानते हैं, यीशु को सीखते हैं, यीशु को सुनते हैं, यीशु को पहचानते हैं। ये वचन यीशु है। और अगर हम इसको प्यार नहीं करते, इसका सम्मान नहीं करते, इसको नहीं खाते, इसको नहीं अपनाते, इसको नहीं जानते, हमारा जीवन हल्का है। और इसलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि इसको अपने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन इसके अनुसार जीवन में चलने के लिए यह वचन मुझे काटना चाहिए, यह वचन मुझे झंझोड़ना चाहिए, ये वचन मुझे संभालना चाहिए, ये वचन मुझे उठाना चाहिए, ये वचन मुझे दिखाना चाहिए, ये वचन मुझे सिखाना चाहिए, ये वचन मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, जिस दिन से आपके हृदय में, आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कितने लोग हैं, अभी पिछले दिनों में बच्चे यहां पर आए थे और बच्चों को हम बहुत कुछ सिखाते हैं एक महीने में। कुछ उनके घर के या उनके चर्च के पास्टर लोग कहने लगे, मुझसे कहने लगे, अंकल हम अपने बच्चों की कॉपी लेकर के कुछ बातों को सीख रहे थे। वो पास्टर है, ये दशा आज क्या हम सचमुच परमेश्वर के वचन के लिए इस तरह लड़ाई थे? हम सोते हैं, उठते हैं, काम वैसे, क्या हमारा कोई समय निर्धारित है कि हम परमेश्वर के वचन को समय देंगे? क्या हमने अपने जीवन को इस तरह से निर्धारित किया है? क्या हम कहेंगे कि प्रभु जी ये आपका वचन मेरा जीवन है और इसको मैं इस तरह से लूंगा ताकि ये वचन मेरा मार्गदर्शन बन जाए, इस वचन से मैं प्यार करता हूं। कितनी बार आपने आंसू साथ इसको अपने सीने से लगा लिया, कितनी बार आंसू के साथ आपने बैठ के वचन को पढ़ लिया। क्या प्रभु से प्यार करते हैं? हम प्रभु से प्यार करते हैं क्या? उसके वचन से प्यार करते हैं? अरे हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। कोई ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी से कहे कि मैं उसे प्यार करता हूं, बात ना करे, उसकी सुनने तैयार नहीं हो? कोई ऐसा बच्चा होगा जो अपने माता पिता का आदर करे और फिर भी उनकी सुनने के लिए तैयार ना हो? हम कहां हैं? हम शिष्य अपने आप को कहते हैं, हम शिष्य की बुलाहट का दावा करते हैं, लेकिन इस वचन का हमारा क्या है? संडे को हम चले आए, बाइबल ले आए, अच्छी बात है। और आजकल तो मोबाइल आ गया। हमारे यहां एक दिन डिवोशन स्टाफ का डिवोशन था, हमारे मॉर्निंग में डिवोशन होता है, सेक्रेटरी मतलब नेशनल बॉडी है उसके जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे, मैं रुके थे। मैंने कहा आप मॉर्निंग में अच्छा बच्चों के साथ कुछ डिवोशन ले लीजिए, और लेके मोबाइल लेके चले आ रहे डिवोशन ले लीजिए। मैंने वेरी इज बाइबल क्या नहीं है? मैंने कहा नहीं, बाइबल लेकर आइए तब डिवोशन लीजिए। लेकर आए, सच है, बाइबल डिवोशन खोलेंगे, बाइबल निकालेंगे, उसी समय कोई मैसेज आएगा, मैसेज पढ़ेंगे या कुछ और आ जाएगा, उससे कहने लगे। ये आज मोबाइल की दशा है, वचन का क्या स्थान है हमारे अंदर? भाई मेरे प्रियो, मैं बड़ी गंभीरता से प्रभु का सेवक होने से डर के साथ आपके साथ विनय करना चाहता हूं, वचन को अपने जीवन में स्थान दीजिए। वो कहता है मैंने वचन को कैसे करा है? प्रतिज्ञा की है, काश हम परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करने वाले बन जाए। दूसरी बात आगे कहता है 58 पद में, मैंने पूरे मन से तुझसे विनय की है, अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करो, ना केवल उसका वचन पढ़ने वाला जीवन, वचन को स्थान देने वाला, परमेश्वर से अनुवेदन करने वाला दे, एक प्रार्थना करने वाला जीवन। क्या का प्रार्थना मांग रहा है? केवल भौतिकतावाद के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, केवल शरीर और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने विनय की है अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह की प्रार्थना कर रहा है। हे प्रभु, मैं संसार में तेरे वचन का आदर करते हुए तुझमें साथ बना रहा हूं। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर मुझे अपने प्रति प्रेम दे दीजिए, आज्ञाकारिता का जीवन दे दीजिए, प्रभु अपनी धार्मिकता को हम ले चलिए, अपना खोजी बना दीजिए, अपना संयम दे दीजिए, हमें बहुत अधिक बहुत सारी चीजों को। अभी पिछले दिनों में मसूरी से मैं मुझे जाना था, मैं जा रहा था, हम 3 घंटे रास्ते में फंस गए, 9:15 ट्रेन थी और ट्रेन छूटने का टाइम आ, मैं बैठा होता गाड़ी में, मुझे मालूम मेरे रिश्ते में क्या दशा रही, और उस समय इतना स्ट्रगल था, एक और यह था कि गाड़ी छूट जाएगी, परेशान था, बेचैन था, दूसरी और बार बार घूम घूम के परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के वचन की ओर ले जा रहा था। पूरे कम से कम 1.5 घंटे में एक ऐसे स्ट्रगल में रहा, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, बार बार स्ट्रगल था, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, और मैं उस समय प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मैं स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं झुंझला भी गया ड्राइवर पर, फिर बाद में मैंने कहा नहीं, मेरे मन में आता है यही समय है, यही परख है। कई बार हम अपने जीवन में उस स्थिति में आते हैं, और हमें अपने जीवन को संभालने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, पाप में से गिरने बचने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए उसका अनुग्रह चाहिए। हमारे पास अपनी शक्ति नहीं है, अपनी सामर्थ्य नहीं है, इस संसार में मसीह जीवन को व्यतीत करते हुए अपनी गवाही बनाने के लिए उसका अनुग्रह चाहिए। हर कदम कदम पर प्रार्थना का जीवन, ना केवल ये, लेकिन आगे चल के एक और बात कहता, तीसरी बात तो कहता है, वो कह रहा है मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया और तेरी चेतावनी का मार लिया। अपने आप को जांचने का जीवन, अपने स्वयं को जांचने का जीवन, पहले परमेश्वर की वचन में बने रहने का जीवन ये प्रतिज्ञा है, दूसरी परमेश्वर के अनुग्रह को पाने की प्रार्थना है, परमेश्वर के अनुग्रह, तीसरा स्वयं के जीवन को, एक शिष्य है अपने स्वयं के जीवन को जांचता है, स्वयं को जीवन करता, और वो कह रहा है कि मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया और तेरी चेतावनी का मार लिया। जब मैं तेरे अपने जीवन को जांच रहा था, तेरी चेतावनियां मेरे सामने आ रही थी, और तेरी चेतावनी जो मुझे सावधान कर रही थी कि तू अपने आप को ये कहता है, तू अपने आप को ये समझता, तू अपने आप को, लेकिन तू ऐसा है। परमेश्वर का वचन जो चेतावनी है वो मुझे सावधान कर रहा है, वो मुझे चिता रहा है, वो मुझे संभाल रहा है, वो मुझे सही मार्गदर्शन ले जा रहा है। जहां मुझे पश्चाताप की जरूरत है पश्चाताप कर रहा हूं, जहां मुझे सुधरने की जरूरत है मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि उसका वचन चेतावनी के समान मेरे सामने आ रहा है। मैं अपने आप को जांच रहा हूं। हम कई बार इतना व्यस्त रहते हैं कार्यों में, अपने दैनिक जीवन में, अपनी धार्मिकता में, अपने सब कुछ में, कि बैठकर हम अपने आप को जांच नहीं पाते। मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं सही कर रही हूं, लेकिन वचन में बार बार, अगर आप यर्मिया में जाएंगे, यर्मिया बार बार परमेश्वर का सेवक कहता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को, पौलुस भी अपनी पत्रियों में लिखता है आचरण के बारे में, अपने आचरणों को देखो। और एक मसीह जीवन, जरूर हम यीशु की ओर देखते हैं, यीशु के वचन की ओर देखते हैं, लेकिन उस प्रकाश में होकर हम अपने आप को भी देखते हैं। हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं, लेकिन अगर मुझे यही नहीं मालूम चलने पा रहा है कि मेरी बीमारी क्या है, तो मैं कैसे इलाज करूंगा, कैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, कैसे मैं उपचार करूंगा। और परमेश्वर का वचन, इसीलिए मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि जैसे ही मैं परमेश्वर को वचन को पढ़ूंगा, परमेश्वर मेरे हृदय को काल करेगा, भैया वचन से दूर रहो, दूर नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ते। पर वो कह रहा है मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया है, नीति वचन में भी आप पढ़ेंगे 16 अध्याय में, 22 अध्याय में, मैं पद नहीं खुलवाऊंगा, लेकिन बार बार नीति वचन में सुलेमान कहता है अपने आचरण पर ध्यान दो। और मेरे प्रियो, यदि हम धार्मिकता के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है हम बैठे वचन के साथ और बैठकर अपने जीवन पर विचार करें, क्या प्रभु मैं सही चल रहा हूं,
क्या प्रभु मैं सही कर रहा हूं, क्या मेरा जीवन आपकी धार्मिकता आपकी पवित्रता आपके भय में है। गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास। इतवार को आए तो बहुत अच्छे, हफ्ते भर जब ऑफिस में है तो वहां ऑफिस का टाइम 8 बजे का है, पहुंच रहे 11 बजे। लोग कहते हैं अरे क्रिश्चियन है ना, देखो जब से क्रिश्चियन हुआ है प्रचार तो बहुत करता है लेकिन तब सब देर मिट्टा ऑफिस में आता है। क्या कर रहे हैं? कोई हमसे कहता है अरे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो मसीह हूं, लेकिन मसीह होने नाते क्या मैं अपना काम उस रीति से कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को देख रहा हूं, जांच रहा हूं? छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में मैं उस घटना को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। एचएल में मैं काम कर रहा था और मैं ऑफिस में जब वर्कशॉप में काम करते हुए मेरे सुपरवाइजर से कुछ बात हो गई, बड़ा शीशा था और शीशे से हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट वहां बैठ करके सब देखते थे, उनका नाम मिस्टर गुप्ता था और मुझे अच्छी तरह जानते थे। मैं सुपरवाइजर पे झुंझला गया। मैंने अपने क्रोध के लिए मुझे बहुत प्रार्थना करी, मैंने बहुत स्ट्रगल करा, अभी भी करता हूं, पर प्रभु ने मुझे संभाला है, पहले से करुणा से भरा है। उस समय मैं कुछ बातें, गलती मेरी नहीं थी लेकिन वो जानबूझ के मुझे परेशान करते थे, और जब मैं झुंझला गया उन्होंने जाके मेरी रिपोर्ट कर दी कुछ कुछ और लगा करके जो कुछ कहना था। गुप्ता जी ने बोला शीशे से देखा, इशारा करा, मैं चला गया। सुपरिटेंडेंट खड़े हो गए, जी सर क्या हो गया रॉबी? मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, श्रीवास्तव जी मुझसे ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये है वो। उन्होंने एक बात कही थी रॉली मैं जानता हूं लेकिन मैं तुम्हें भी जानता हूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा यू आर क्रिश्चियन। जब उन्होंने शब्द मुझे कहे मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैंने सॉरी सर, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु का। जब मैंने एचएल छोड़ा वही ऑफिसर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा मेरा आदर किया था। मैं प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहता हूं, लेकिन उनकी शब्दों में कभी नहीं भूलता, एक शब्द कहा था उन्होंने, रॉली और कृष्ण गुप्ता जी थे, वो जानते थे, उन्होंने सब कुछ सुना था, मेरे रेजिग्नेशन लेटर को जो लिखा था वो सब कुछ सुना, सारा जानते थे वो अच्छी तरह से, लेकिन उन्होंने मुझे सुधार दिया। क्या मतलब है? हमें बार 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 बार, आज भी मुझे अपने जीवन को देखना पड़ता है, आज भी मुझे अपने आप को जांचना पड़ता है, आज भी मुझे ठहरना पड़ता है। हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, लेकिन अगर कभी भी हम ना सोचे इस बात को मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक झूठे घमंड में रहते हैं कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, लेकिन एक शिष्य उसके पांव के पीछे चलते चलते, उसके पदचिन्हों पे चलते चलते उसके स्वरूप में बदलता चला जाता है, उसके स्वरूप में बदलता है। चौथी बात, वो आगे क्या कहता है, ना केवल ये लेकिन 62 पद में, मैं तेरे धर्म नियमों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद का जीवन आधी रात को, क्यों? क्या उसके पास समस्या नहीं थी? क्या उसके पास कठिनाई नहीं थी? क्या उसके पास शत्रुता नहीं थी? क्या उसके पास विरोध नहीं था? क्या उसके पास सारी चारों से जानते किस प्रकार से वो संघर्ष में रहा है, लेकिन उन संघर्षों के बीच में, अपनी असफलताओं के बीच में वो परमेश्वर के उपकारों को याद कर सकता है, परमेश्वर की महानता को याद कर सकता है, परमेश्वर की बातों को याद करता है, और वो कहता है सब कुछ के साथ भी अगर मैं आधी रात में उठ रहा हूं तो मेरा हृदय तेरे प्रति धन्यवादित है। ओ प्रभु तूने मुझे उद्धार का जीवन दिया है, तूने मुझे अपने संतान बनाया है, तूने मुझे अपने राज में वारिस किया है, तूने अपने राज का मुझे संगी बनाया है। ओ प्रभु चाहे जैसी परिस्थिति हो, घटी होती है, कमी होती है, बीमारी होती है, सब कुछ होता है, प्रभु आप नियंत्रण कर रहे हैं, आप नियंत्रण कर रहे हैं। जब आंटी बीमार थी, माफ कीजिएगा मैं ध्यान दे रहा हूं, आंटी बीमार हुई, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको, और हर्षित भैया यूएस में थे, हमेशा फोन करके एक बात कहते थे, पापा हमारा परमेश्वर नियंत्रण करता है सब बातों को, वो बार बार यही कहते। मेरे प्रियो अगर सचमुच में हम इस बात को जानते कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, तो चाहे दुख है, बीमारी है, संकट है, मृत्यु है, शत्रुता है, घटी है, कमी है, हमारा हृदय, हमारा जीवन कुड़कुड़ाट का नहीं लेकिन धन्यवादित का जीवन होगा। हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होंगे, ना केवल परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होंगे लेकिन परमेश्वर के लोगों के प्रति कृतज्ञ होंगे। हमारे अंदर धन्यवाद का आत्मा रहेगा, धन्यवाद की भलाई रहेंगे, और हमारे एक्शन, हमारे कार्य, हमारा जीवन उन धन्यवादों को दिखाएगा कि हम परमेश्वर के उपकारों के प्रति धन्यवादित हैं। कहता है कि मैं चाहे कुछ भी हो आधी रात को मैं धन्यवाद करूंगा। सो एक शिष्य है ना केवल परमेश्वर के वचन के प्रति जिसमें जुड़ा रहता है, उसके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति लालसा है, प्रतिज्ञा है उसमें बना रहने की, ना केवल परमेश्वर से प्रार्थना करता है, ना केवल अपने जीवन को जांचता है, ना केवल वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का जीवन व्यतीत करता है हर समय में हर पल में। हम उस गीत को गाते हैं हर पल में हर परिस्थिति में धन्यवाद करेंगे, हम गीत गुगाते हैं है ना, यीशु का नाम बजेंगे वो करेंगे। लेकिन आखिरी बात वो कहना चाहता है इन सब कुछ के बाद वो क्या कह रहा है, जो तेरा मेहमान है 63 पद, जो तेरा मेहमानते हैं और तेरे उपदेशों को प्रचलते हैं उन सब का मैं साथी हूं। मेरी मित्रता का चुनाव, मेरी सहभागिता का चुनाव, मेरे चारों ओर जो लोग हैं वो कह रहा है कि मैं उन लोगों का साथी हूं जो तेरा भय मानते हैं। मेरे प्रियो यह सच है, जब हम प्रभु में आते हैं हमें संसार की बहुत सारे दायरों को तोड़ना पड़ता है, मित्रता को तोड़ना पड़ता है, सच है, यह वास्ता है और ऐसा होना है। वो कह रहा है मैंने कह रहा है उनको जो तेरे उपदेशों पर चलते हैं, सुनते नहीं बातचीत नहीं करते लेकिन चलते हैं। मेरे प्रियो अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके शिष्य हैं, अब ये नहीं कि हम सब, बाइबल साफ कहती है हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है। हम ये नहीं कि ठीक है मैं प्रभु यीशु मसीह पे मैं विश्वास करता हूं अब मुझे मैं किसी से बांधे, हम संसार में रहेंगे, संसार में हमें काम भी करना है और काम करेंगे, अन्य जातियों के बीच में हमें काम करना है, जो झूठ बोलते हैं चोरी करते हैं छल करते हैं उनके बीच में हमें काम करना है, वहां पर रहकर हमें अपने जीवन को परमेश्वर की साक्षी में रखना है, गवाही में रखना है। लेकिन जो हमारे घनिष्ठ मित्रता जिनके साथ हम अधिक समय व्यतीत करते हैं वो हमारे वही लोग हैं जो प्रभु के वचन का करते हैं। संसार के लोगों से हम निकल के भाग नहीं सकते, हम उनके उनमें हैं लेकिन उनके जैसे नहीं हैं, है ना। आप कितने हमारी बहनें हैं जो स्कूल में काम करती हैं, टीचर हैं, लेकिन उनके सारे चारों तरफ जो अन्य शिक्षाएं हैं वो अन्य जाती हैं, लेकिन वो विश्वासी बहन जो अन्य जो विश्वासी बहन है उन अन्य जातियों के बीच में इस प्रकार का जीवन व्यतीत करती है कि वो प्रभु को जानती है और कई सारी चीजों में वो अपने आप को अलग। पिछले 40 वर्षों में प्रभु ने हर क्षेत्र में इतने अनुभव दिए हैं, इतने अनुभवों से ले गए हैं कि हर जगह कोई ना कोई अनुभव प्रभु सामने ले आता है आगे यात्रा में। मेरे प्रियो कई बार हम अरे हम वहां काम करेंगे तो ये हो जाएगा, वहां काम करेंगे तो ये हो जाएगा, वहां काम करेंगे नहीं। अगर मेरा जीवन, मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर हमें ऐसा जीवन दे दे, हम समाज हमें नहीं बदलना चाहिए, हम समाज को बदल दें। अगर हम गांव में विश्वास में आए हम इस तरह से खड़े होंगे, गांव जैसा कह रहा उसके पीछे नहीं चलेंगे, लेकिन एक समय आएगा जैसा हम कह रहे हैं लोग हमारे पीछे चलेंगे। हमारे बीच में कितने ऐसे भाई रहे, एक भाई आज 12 बंकी काम कर रहा है, जब उसने प्रभु में हमारे साथ सेवा में जब उसने प्रभु ग्रहण किया था उसकी बहन की शादी थी, गांव वालों ने कहा हम कोई शादी में नहीं आएंगे, जब उसने कहा कोई शादी में नहीं आएंगे उसने कहा कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, हमने कहा परेशान मत होइए, हम लोगों ने साथ मिल करके कुछ पैसा जमा करा, पैसा जमा करके कुछ सामान लिया और उसकी बहन की शादी के लिए लोगों ने, और करीब हम 30-35 लोग एक साथ वहां गए रात में शादी में पूरी रात में, और फिर एक फिल्म दिखाई सब कुछ, पूरा गाँव सुन रहे गए कि हमने तो सोचा था कि इनके यहाँ कोई नहीं आएगा, और आज उस गाँव में उस भाई को जो सम्मान है। मेरे प्रियो सच में हम उनके साथी हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, हमें समझना है हम संसार से अलग नहीं है लेकिन उसमें रह के अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारी साक्षी का जीवन है, ये हमारी गवाही का जीवन है, ये हमारे एक लोगों के सामने अपने आप को रखने का जीवन है कि एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने नाते हमारा दायरा क्या, एक विश्वासी को मालूम चाहिए कि उसका दायरा क्या है, किस दायरे तक वो अपने आप को रखता है, उस दायरे से कहां उसको जाना है, इसको देखना है। मेरे प्रियो हम समझौता नहीं करते, समझौते से सावधान रहते हैं लेकिन इस प्रकार से जीते हैं ताकि बहुतों को प्रभु की ओर आकर्षित कर दें। ये मसीह जीवन है, ये शिष्यता जीवन है। सो अगर हम शिष्य हैं यीशु मसीह के, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं तो प्रश्न यह है क्या सच जो पहली बात हमने उसके राज के सुसमाचार पर विश्वास किया है, वो राज जो धार्मिकता का राज है, जिस राज की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने आकर ये प्रचार करना शुरू करा कि देखो स्वर्ग का राज आ गया है, तुम्हारे बीच में है, उसका मतलब ये कि वो स्वयं स्वर्ग का राज है और उस पर विश्वास करने वाले लोग उसके राज में शामिल होंगे। लेकिन उस राज की स्थापना करने के लिए उसको एक कीमत चुकानी पड़ी और वो कीमत थी जो उसने क्रूस की मृत्यु को सहा और उसी को पूरा करने के लिए उस पृथ्वी पर आया था वो। और इसीलिए वो कह रहा है पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो। और मेरे प्रियो इन शिष्यों ने उसकी आवाज को सुना, इन शिष्यों ने उसके सुसमाचार को सुना, इन शिष्यों ने उसके सुसमाचार पर विश्वास किया, इन शिष्यों ने मन फिराया और वो उसके पीछे चल पड़े, उसके पीछे चल पड़े। ये था। और मेरे प्रियो यदि मेरे और आपके जीवन में साक्षी है, ये दृढ़ता है, ये निश्चयता है, हम यीशु की शिष्यता में निरंतर आगे बढ़ते चले आएंगे। लेकिन विश्वास करके केवल पीछे नहीं चलना, जरा पीछे मुड़कर देखिए कि आप कितने कदम आगे आ गए हैं। आप पीछे मुड़कर देखिए कि आप कितने कदम आ गए हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं उन दो शराबियों का, कई बार मैंने बोला है, कई बार बोला तो उनको याद है। उनको नदी पार करके जाना था एक शहर में, वो नदी पार करके गए, दिन भर घूमना था तो नाव से जाते थे, नाव को लेके आते थे और वो पेड़ पर नाव को बांध देते थे और बांधने के बाद फिर पूरा बाजार घूमते थे, सब कुछ करते थे, फिर शाम वापस आते थे। वो जब एक दिन गए और नाव को उन्होंने बांधा और जाके उन्होंने पी ली और तबीयत से पी ली और पीने के बाद वापिस आए, नाव में बैठ गए, नाव बैठ गया, नाव बैठ के हाँकने लगे, हाँकने लगे, हाँक रहे, पसीना आ रहा, हाँक रहे हैं और सोच रहे, बात कर रहे। पूरी रात निकल गई, रात में सूर्य चंद्र चांदी रात थी, थोड़ा सा धुंधला था, धीरे धीरे अब बोर होने लगे, अब सोच रहे कि ना हो अब हमारी पार हो, आपस में बात कर रहे हैं, अभी तक इतनी दूर अब तक पार नहीं हो पाए, अभी तक पार नहीं हो पाए, हाँ ठीक है, दूसरा कहना हाँ अभी आ रहे पार हो रहे, अरे अभी धीरे चमक रहा। अच्छा जब सुबह हो गया, देखा रहे अभी तो वो ना बहुत दूर है अभी तक, अरे अभी इतनी दूर है, अभी तुमने कहीं आगे भी बढ़ी क्या, बात करने देखा तो देखा वो पेड़ में जो नाव रस्सी बंधी थी वो बंधी हुई है, काटी तो थी नहीं और रस्सी तो बंधी हुई है, वो खोली नहीं थी और रात भर नाव लगे 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 लगे। मेरे प्रयोग कितनी शिष्यता ऐसे आरंभ करते हैं, कितने लोग इसी तरह से अपने मसीह जीवन को आरंभ करते हैं, जो नाव जो बंधन काटने चाहिए, जिन बंधनों ने हमें बांध रखा है, जो आगे बढ़ने में रुकावट का कारण है, उनको काटना चाहिए, हम नहीं काटते, नहीं खोलते, वो बंधे रहते हैं और हम जहां के वहीं पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ने पाते। अवश्य परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में होकर, प्रकाश में होकर वो बंधन काटे जाए, तोड़े जाए और हम उसके पीछे चले, तब हम उस नाव में आगे बढ़ेंगे और उस स्थान तक पहुंचने पाएंगे जहां पहुंचना है। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको अपना शिष्य बनाया है, वो छोड़कर सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। मैं और आप किस रीति से उसके पीछे चल पड़ रहे हैं, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम देखें अपने आप को, हम जांच सकें क्या हमने उसके सुसमाचार पर सच्चाई से विश्वास किया है, क्या हमने उन बंधनों को काटा है, क्या हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में बनकर उससे प्रेम करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं तो हमें पश्चाताप की जरूरत है, हम पश्चाताप करें और प्रभु से सहायता मांगे और प्रभु से उस प्रेम को मांग लें जो उसके वचन के साथ बने रहने का है। और जो पांच बातें हमने देखी हैं दाऊद के जीवन से, वो मेरे और आपके जीवन पाए जा सके, निश्चय हम उसकी शिष्यता में बढ़ेंगे और प्रमाणित होने पाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम सचमुच में आपके भारी हैं प्रभु, आपने कितना अधिक हमसे प्रेम किया कि प्रभु आपने किसी भी प्रकार से हमें अंधकार में नहीं रखा, आपने अपना शुभ संदेश शुभ समाचार स्वयं स्पष्टता के साथ हमें दिया है प्रभु, ताकि हम आपके सुसमाचार पर विश्वास करें प्रभु, पश्चाताप करके विश्वास करके आज्ञा पालन करके आपके शिष्य बनकर आपके पीछे चल पड़े। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी सहायता कीजिए, हमारी असफलताओं में प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें ऐसा मन दीजिए जो पश्चाताप का मन है, आंसुओं के साथ प्रभु हम आपके सामने अपने निर्बलताओं के लिए, असफलताओं के लिए पश्चाताप करके, क्षमा मांग करके प्रभु आपके हाथों में अपने आप को देकर आगे बढ़ सके। हम आपकी शिष्यता में बने रहना चाहते हैं, हम आपकी शिष्यता में बढ़ना चाहते हैं, हम आपकी शिष्यता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। प्रभु दया कीजिए, धन्यवाद देते प्रभु आपने हमें अपना शिष्य बनाया है, सहायता कीजिए ना केवल हम स्वयं शिष्य बने लेकिन हम दूसरों को भी शिष्य बना सकें। इस वचन की रक्षा करें, हमारे जीवन की रक्षा करें। सारा आदर देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।